ये आकाशवाणी दिल्ली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीत की हैट्रिक। केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में हम सफर नीति की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली नगर निगम ने त्योहारों से पहले राजधानी को कूड़ा मलबा और प्रदूषण से निपटने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया और दिल्ली मेट्रो रेल निगम इस महीने साइबर सुरक्षा जागरूकता माह मना रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। पार्टी राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा की 89 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 36 सीटें मिली हैं और एक सीट पर आगे चल रही है। इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर विजयी रही और 3 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा सीट पर 16,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। राज्य सरकार में मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा को पराजित किया। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से 71,000 से अधिक वोटों से विजयी रहे। कांग्रेस की विनेश फोगाट जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से विजयी रही। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को जनादेश देने के लिए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को भी बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। श्री मोदी ने लोगों को आश्वस्त किया कि भाजपा सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं और इसमें भारी मतदान हुआ। ये लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को जनादेश देने के लिए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये जीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में लोगों के अटूट विश्वास की भी अभिव्यक्ति है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने जाति और क्षेत्र के आधार पर बांटने वाली कांग्रेस की नकारात्मक और विभाजनकारी राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिणामों पर श्री शाह ने कहा कि लोगों ने पार्टी को सबसे अधिक वोट प्रतिशत के साथ आशीर्वाद दिया और अब तक के इतिहास में भाजपा को सबसे अधिक सीटें दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाना और देश के अन्य क्षेत्रों की तरह उसका विकास करना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को बहुमत देने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भाजपा को चुना है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस की आलोचना करते हुए श्री सचदेवा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है और प्रदेश के विकास के लिए भाजपा को मौका दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के तहत दिल्ली से सटे फरीदाबाद जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना आज शांति से संपन्न हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने मतगणना के दौरान सभी 6 विधानसभा मतगणना केंद्रों का दौरा किया। श्री सिंह ने बताया कि जिले के सभी 6 मतगणना केंद्रों पर मतगणना उपरांत विजेता रहे प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे गए। डीएवी स्कूल सेक्टर 14 फरीदाबाद में निर्वाचन अधिकारी शिखा ने फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से विजेता रहे भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल को और श्रीमती सुषमा स्वराज कॉलेज बल्लभगढ़ से बल्लभगढ़ के निर्वाचन अधिकारी मयंक भारद्वाज ने विजेता रहे भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा को सौंपा। इनके अलावा बड़खल विधानसभा क्षेत्र से विजयी रहे भाजपा प्रत्याशी धनेश अदलखा, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से विजेता रहे भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार फागना, पृथला विधानसभा क्षेत्र से विजयी कांग्रेस प्रत्याशी रघुबीर तेवतिया और तिंगांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे गये। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा एक सीट पर जीत दर्ज करने पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री केजरीवाल ने डोडा क्षेत्र से विजयी हुए पार्टी उम्मीदवार मेहराज मलिक को बधाई दी है। श्री मलिक से वीडियो कॉल पर बातचीत में श्री केजरीवाल ने कहा कि वे बृहस्पतिवार को उनके विधानसभा क्षेत्र आकर उनसे मुलाकात करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए आज नई दिल्ली में हम सफर नीति की शुरूआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस योजना से समाज के स्थानीय सीमांत वर्गों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना सुगम, सुरक्षित और सुखद यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। श्री गडकरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह नीति पर्यावरण के अनुकूल होगी, जिसे पारिस्थितिकी और स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि देश में 1,50,000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि हम सफर नीति से यात्रियों को मानकीकृत, सुव्यवस्थित और स्वच्छ सुविधाओं तक पहुंच संभव हो सकेगी। यात्री राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से अपने स्थान के निकट के सेवा प्रदाताओं का विवरण तुरंत पा सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने करनैल सिंह स्टेडियम में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में डीएमआरसी, भारतीय रेल तकनीकी और आर्थिक सेवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ विकास कुमार ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। भारतीय वायुसेना आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर भारतीय वायुसेना को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वायुसेना को उसके साहस और दक्षता के लिए सराहा जाता है तथा राष्ट्र की रक्षा में उसकी भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय है। राजमार्ग राज्य मंत्री हरीश मल्होत्रा ने आज भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर लद्दाख के थोई से 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में वायुसेना के विभिन्न योद्धा और उत्तराखंड युद्ध स्मारक के दिग्गज शामिल हैं। रैली का नेतृत्व भारतीय वायुसेना के एडवेंचर सेल के विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट कर रहे हैं। कार रैली करगिल, श्रीनगर, जम्मू, देहरादून से होते हुए इस महीने की 29 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में समाप्त होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने फिल्म उद्योग में श्री चक्रवर्ती के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुरस्कृत फिल्में समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार प्रतिभा विकास, बुनियादी ढांचा और सरलीकरण के दृष्टिकोण के साथ फिल्म उद्योग को विकसित करने के लिए काम कर रही है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाचू ने कहा कि वर्ष 2022 के लिए मंत्रालय को फीचर फिल्म श्रेणी में 32 विभिन्न भाषाओं में कुल 309 फिल्मों और गैर फीचर श्रेणी में 17 भाषाओं में 128 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी।
ऋषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, नित्य मेनन को तमिल फिल्म थिरुची त्रांबलम के लिए और मानसी पारिक को गुजराती फिल्म कच्च एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म आट्टम को और गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार आयना फिल्म को प्रदान किया गया। सूरज बड़जात्या को ऊंचाई फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और गैर फीचर फिल्म श्रेणी में हरियाणवी फिल्म फौजा को सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार प्रदान किया गया। अरिजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्वगायक और बॉम्बे जयश्री को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगायक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म समीक्षक दीपक दुआ को सर्वश्रेष्ठ समीक्षक पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत तथा अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव धर को किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी पुस्तक के लिए सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक श्रेणी के अंतर्गत स्वर्ण कमल प्रदान किया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व नेता रामविलास पासवान को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्हें देश के बड़े नेताओं में से एक बताते हुए श्री मोदी ने उनके साथ काम करने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वे कई मुद्दों पर श्री पासवान की अंतर्दृष्टि को बहुत याद करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजनेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन का आयोजन इस महीने की 14 से 24 तारीख तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें विश्वभर से 3000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के मानकों का भविष्य तय करना है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी के विजय घाट क्षेत्र से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 23 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता का गांजा जब्त किया गया, जिसकी भारतीय बाजार में अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा मादक पदार्थ की आपूर्ति में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार भी जब्त की गई है। दिल्ली नगर निगम ने त्योहारों से पहले राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आज से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत निगम के सभी 250 वार्डों में कूड़े और मलबे का निस्तारण किया जाएगा। एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओबरॉय और सदन के नेता मुकेश गोयल ने बताया कि शहर में कूड़ा और मलबा बड़ी समस्याएं बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि राजधानी में हर वर्ष सर्दियों के दौरान प्रदूषण की समस्या रहती है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका मलबे की होती है। महापौर ने बताया कि इस मुहिम के तहत दिल्ली के सभी 12 क्षेत्रों के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने क्षेत्र और वार्ड का रोजाना निरीक्षण करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC इस महीने साइबर सुरक्षा जागरूकता माह मना रहा है। इस अवसर पर आज राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने नेतृत्व क्षमता पर एक व्याख्यान दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली मेट्रो जैसी शहरी परिवहन प्रणालियों को ऑनलाइन खतरों से बचाने में साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री बढ़कर 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीत की हैट्रिक। केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में हम सफर नीति की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली नगर निगम ने त्योहारों से पहले राजधानी को कूड़ा मलबा और प्रदूषण से निपटने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। और दिल्ली मेट्रो रेल निगम इस महीने साइबर सुरक्षा जागरूकता माह मना रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।